हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 27। इस अत्यंत ही पवित्र और दिव्य ज्ञान को अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपि तमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दीक्षतां तमोधम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससोऽनुमुपया मे गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 27। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादी श्वयैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादी श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादी श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजीप्सव। शब्दों का अर्थ देखिए। रजस अर्थात रजोगुण, तमः अर्थात तमोगुण, प्रकृतयः अर्थात स्वभाव का, समशीला एक ही कोटि के, भजन्ति यानी पूजा करते हैं, वै यानी निश्चय ही, यानी कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जो सत्व गुण में होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वो मुमुक्षु होते हैं क्योंकि उनको मोक्ष के अतिरिक्त और कोई वास्तविक भौतिक इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो किधर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के जो स्वरूप तत्व जो है उनकी ओर ही जाते हैं, जीव तत्व में नहीं जाते, विष्णु तत्व भक्ति करते हैं। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण जिनके ऊपर प्रकृति के ये गुण बहुत ज्यादा प्रभाव करते हैं, वे निश्चित ही क्या करते हैं, पितृभूत प्रजेशादीन। अब देख लो, पितृ अर्थात पितृगण, जैसे कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, जैसे जो मर गए होते हैं, या फिर कुछ लोग की कब्रें होती हैं, दरगाह होती हैं और मजारे होती है ना, इनको बोलते पितृ। और या फिर खाली पितरों को ही तर्पण वगैरह वही करना चाहते हैं और सोचते हैं कि पितृ ही कल्याण करेंगे, उनकी बुद्धि आगे नहीं जाती। और कुछ अत्यंत ही तमह लिखा ना, रजस ये रजोगुणी होते हैं, और तमह जो बहुत ज्यादा तमोगुण में होते हैं, जो हानिकारक कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, भूत भूत होते हैं, जिन भूत जो काला जादू करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। तो भूत का मतलब वो भी होता है, और भूत का मतलब वो भी होता है अन्य जीव। यहाँ पर अन्य जीव मतलब जैसे दूसरे जीव प्राणी है ना, उनकी पुत्र भूत प्रजेता प्रजेशादीन, प्रजेशादीन का मतलब होता है प्रजापति इत्यादि, यानी कि जो प्रजापति का क्या मतलब होता है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने ना सृष्टि का सृजन किया है, या इंद्रदेव, तो इस तरह की जो देवता है उनकी पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, दूसरे जीवों की। मतलब दूसरे जीव कैसे होते हैं, जैसे कोई श्रेष्ठ हो जाता है कि भाई ये बापू की सेवा करो, ये बाबा की सेवा करो, ये बाबा सब कुछ दे देंगे, ये भगत है वो भूत तथा। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो दूसरे जीव है ना उनकी पूजा करते हैं, सोचते हैं कि यही सब कुछ इनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होगा, कि भगवान भगवान को नहीं मानते हैं वो। क्यों ऐसा करते हैं वो, तो आगे बता रहे हैं कि उनकी इच्छा क्या होती है। श्री श्री या ऐश्वर्य प्रजेत्सव। श्री का क्या मतलब होता है, श्री का मतलब होता है संपन्नता, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है सुंदरता, श्री का मतलब होता है धन, श्री का मतलब होता है ज्ञान, श्री का मतलब सब कुछ होता है। जो भी एक जीव प्राप्त करना चाहता है ना, तो श्री यानी कि वो उसको प्राप्त करने के लिए, वो या तो फिर है ना श्री को प्राप्त करने के लिए पितरों की, अन्य जीवों यानी भूत यानी अन्य जीवों की और अन्य देवताओं की पूजा करता है श्री हासिल करने के लिए, और ऐश्वर्य हासिल करने के। ऐश्वर्य का मतलब होता है संपत्ति तथा शक्ति। ऐश्वर्य का मतलब होता है जैसे बहुत ज्यादा धन दौलत या फिर बहुत ज्यादा शक्ति वो प्राप्त करना चाहता है। प्रजा का क्या मतलब होता है, श्री ऐश्वर्य प्रजेत्सव। प्रजा का क्या मतलब होता है कि किसी को ना संतान की उत्पत्ति, संतान की आवश्यकता होती है कि मुझे पुत्र हो, उनके पुत्र हो, उनके पुत्रों संतानों के लिए जैसे जाते हैं देवताओं के पास पूजा करने के लिए। ईप्सव मतलब ऐसी इच्छा करते हैं, ईप्सव ऐसी ही बस इच्छा करते हैं, या तो उनको श्री चाहिए या ऐश्वर्य चाहिए या संतान चाहिए, तो वो किधर जाते हैं, पितृभूत प्रजेश आदि, पितरों के पास जाते हैं, अन्य जीवों के पास जाते हैं, किसी ना कोई बड़े ऐसे ही तथाकथित सो कार्ड ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं हमारी आप ना पीठ पे हाथ रख दो, मेरा बॉन्ड लग जाए, जैसे बॉन्ड भी लगता है, लॉटरी लग जाए, या फिर है ना मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। तो लोग के ऊपर, भूत का मतलब होता है दूसरे लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या फिर देवताओं की पूजा करते हैं या अपने पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है श्री ऐश्वर्य और संतान प्राप्त करने की। अनुवाद देखिए, जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं पूजा करते हैं। सृष्टि संबंधी गतिविधि यानी जो सृष्टि को, जैसे ब्रह्मा जी पालन करते हैं और इंद्र वर्षा देते हैं, सूर्य देवता सूर्य अग्नि देते हैं, और अग्नि वरुण वायु, वरुण देवता की पूजा करते, कुछ के ये ना समुद्र के देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं उन जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रभारी हैं, उनकी पूजा करते। क्यों, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनको क्या चाहिए होता है, या तो स्त्री चाहिए होती है, अच्छी, श्री का मतलब स्त्री भी होता है, और धन चाहिए होता है, शक्ति चाहिए होती है, संतान चाहिए होता है, इसी को प्राप्त करने के लिए वो भगवान के पास नहीं जाते। जैसे हमने कल श्लोक नंबर 26 में पढ़ा, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वान भूतपतिनथ नारायण कलाशंता भजन्ति यनसूयव। कि जो लोग मोक्ष के कामी हैं, वो जो देवताओं के उग्र रूप होते हैं और जो दूसरे रूप होते हैं, उन सबका हित्वा, उन सबका त्याग करते हैं, मतलब उन सब की बजाय किसकी पूजा करते हैं, नारायण कलाशंता, और बिल्कुल द्वेष रहित होकर ईर्ष्या रहित होकर भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भौतिक इच्छा नहीं होती, उनके पास ज्ञान होता है कि भौतिक वस्तुएं तो क्षणिक है, तो क्षणिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को क्यों समाप्त कर दें, क्यों न हम शाश्वत मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त करें। वास्तव में ज्ञान सबके पास होता है, हम सब भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और भगवान ज्ञानमय है, तो हमारे अंदर भी ज्ञान है। लेकिन यहाँ संसार में आने के बाद रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, धूमे नाव्रियते वहने यथा दर्शी दर्शो मलिन यथोर्बेनावृतो गर्भ तथा तीन दमावृतम, कि जिस प्रकार अग्नि से धुआं और मट्टी से दर्पण और गर्भाशय में बालक गर्भ से ढका हुआ होता है, उसी प्रकार जीव आत्मा की जो पवित्र चेतना है, पवित्र जो ज्ञान है, वो इस काम से ढक जाता है। काम यानी रजोगुण से ढक जाता है। तो जब काम ढक जाता है तो क्या करता है, क्योंकि ज्ञान तो ढक गया, पवित्र चेतना तो ढक गई। वैसे वास्तविक पवित्र चेतना तो क्या बताती है कि सांसारिक वस्तुएं हमें लाभ नहीं देंगी, लेकिन क्योंकि काम वासना इतनी तीव्र हो जाती है और रजोगुण इतना बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारी वो चेतना ढक जाती है और फिर हम भगवान की बजाय और कहीं जाने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ से हमारी इंद्र तृप्त की सामग्री हमें प्राप्त होती है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद वशोपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि सचमुच भगवान के धाम को वापस जाना है तो किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यदि आपको अपना लक्ष्य खबर पड़ जाए ना, फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। एकम का मतलब होता है वन एंड ओनली कृष्ण, नथिंग एनीबॉडी एल्स, नथिंग एनी देवता, नथिंग एनी अवतार। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के पास जाने की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में 7:20 and 23 में स्पष्ट कहा गया है कि जो भौतिक भोग के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं। 20 में क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, काम स्तुत ज्ञान प्रपथ्यन्ति अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्यानि यत्याश्वः। यानी कि कामे स्थित ज्ञान, कामनाओं ने, इच्छाओं ने, रजोगुण ने, आसक्ति ने, जिनका हृत ज्ञान, जिनके ज्ञान का बलात्कार कर दिया है और हरण कर दिया है, हृत मतलब हरण कर दिया है, उसके ज्ञान को किडनैप कर दिया है, तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, फिर वो क्या करते हैं, अन्य देवता दूसरे देवताओं के पास जाते हैं और तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्यानि यत्याश्वः, फिर उन्हीं की जैसे जैसे पूजा की विधि विधान है उसके अनुसार उनकी पूजा करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं ने उनकी मति भ्रमित कर दी है, उनका ज्ञान समाप्त कर दिया है। और 23 में क्या बताया भगवान ने, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेदसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेदसां, ये अल्पमेदस हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उनकी अक्ल अच्छा काम नहीं कर रही है, सही तरह से उनको है ना गाइड नहीं कर रही, तभी वो क्या करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और उनको जो फल प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं, अंतवत्तु फलम, अंतवत्तु मतलब क्षणिक है, नाश हो जाने वाले हैं, और उसके अतिरिक्त उनके साथ और भी बहुत बड़ा जो दुर्घटना होने वाली वो क्या है, देवान देव यजो यान्ति, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाएंगे, और देवलोक तो स्वतः देवलोक ही समाप्त हो जाने वाला है, क्षणिक है, तो उन्हें नित्य आनंद प्राप्त नहीं होगा। और भगवान कहते हैं मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो अंततः मेरे परम धाम में आते हैं। तो क्योंकि उनकी बुद्धि कामनाओं ने इतनी भ्रष्ट कर दी होती है, हृत ज्ञाना, तो फिर उन लोगों को ये याद नहीं आता या ये समझ में नहीं आता कि आगे हमारे साथ कितना बुरा हो जाएगा अगर हम भगवान के अतिरिक्त किसी और की पूजा करेंगे। तो आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाँ, जो भौतिक भोग के पीछे पागल होते हैं वे क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। ऐसे बोला अल्पमेय दशा बेवकूफ लोग हैं जो अक्कल नहीं है, ऐसे लाभ उनको ही चाहिए होते हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्तों के हृदय में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें तयोर्नवश मागच्छेत। भगवान कहते हैं 3.34 में कि हमें उन राग और द्वेष की जो हृदय के अंदर कामना उत्पन्न हो रही हैं, उनकी वश में नहीं आना है। अगर उत्पन्न हो रही हैं, तो 2.70 में भगवान बता रहे हैं आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियां समुद्र में आती रहती हैं, जब वर्षा होती है तो समुद्र में तो बहुत सारी नदियां आती हैं, लेकिन समुद्र अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार हर किसी के हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? भगवान कहना चाहते हैं अगर शांति प्राप्त करनी है तो क्या करो, जिस तरह समुद्र उनको उनकी लहरों के या नदियों के आने से विचलित नहीं होता है, तो आप भी उन कामनाओं के आने से विचलित नहीं हो। सशांति में आपनोति न काम कामी, अगर आप विचलित हो जाओगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। न काम कामी, अगर उन कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करोगे तभी आपको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। वास्तव में जीव के पास ज्ञान उसका हरण हो गया ना, तब वो क्या सोचता है कि इन इच्छाओं को पूरा करके शांति प्राप्त होगी। लेकिन भगवान कहते हैं क्या, सशांति माप्नोति न काम कामी, यदि आप इच्छाओं को पूरा करने के पीछे चलोगे तब भी आपको शांति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इनको आने दो। नदी जिस तरह समुद्र विचलित नहीं हो रहा है, उस तरह आप भी क्या करो, तयोर न वश महागच्छेत, उन इच्छाओं के वश में आने की आवश्यकता नहीं है, इन इच्छाओं को कंट्रोल करो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छाओं को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन उतना ही स्वीकार किया जाए जहां तक आवश्यक हो, न उससे कम न उससे ज्यादा। का मतलब कि इतना भी नहीं कि इंसान खाना छोड़ दे, सोना छोड़ दे, क्योंकि अभी हमें अपनी शरीर यात्रा को चलाना है, भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है। तो जितनी आवश्यक है उतनी, आवश्यकता पूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आवश्यकताएं जब बढ़ जाती हैं फिर वो क्या हो जाती है, वो एक्सेस जो हम करते हैं ना, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो उससे हमें बचना है, उनकी वश में नहीं आना है। अधिक भौतिक भोग स्वीकारने का अर्थ है संसार के कष्टों से अधिक अधिक फंसना। यहाँ पर श्री रूपा जी कितना उत्तम ज्ञान दे रहे हैं कि जितना आपके पास भौतिक भोग की सुविधाएं होंगी ना, उतना उससे ज्यादा आप संसार के कष्टों से अधिक अधिक बंधोगे। यानी देखिए, किसी किसी व्यक्ति को अगर ना एसी की आदत नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बगैर मतलब ऐसे बगैर एसी के सो जाता है। लेकिन किसी को अगर एयर कंडीशन की आदत है और वो किधर दूसरी जगह पे जाएगा दो दिन के लिए, तो कितना उसको कष्ट होगा, उसको लगेगा कि जीना संभव नहीं है एसी के बगैर। इसी तरह से जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे जिसकी भी हम आदत कर लेते हैं, एक बार उसको भौतिक भोग को स्वीकार कर लेते हैं तो दोबारा से वो हमारी वीकनेस बन जाती है ना, हमारे कष्टों का कारण बन जाती है। तो श्री गोपाल जी को बता रहे हैं कि अधिक भोग स्वीकार करने का अर्थ है संसार के कष्टों से अधिकाधिक बंधना। तो वही चीजें जो हमें सुविधाएं प्रदान कर रही है, जब होती है तो सुविधा प्रदान करती है, जब नहीं होती है तो उस सुविधा से करोड़ों गुना ज्यादा हमें कष्ट प्रदान कर रही होती है, जीना दुभर हो जाता है। तो क्योंकि हम उसमें फंस गए हैं, बंध गए हैं, तो जो लोग भौतिकता से संपन्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी भव्यता जैसी वस्तुएं चाहिए होती हैं, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ होते हैं। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, विष्णु तत्व से जो हमें प्राप्त होता है वो इन सब भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा आनंदमय है, बहुत कृपामय है, इतनी करुणा प्राप्त होने वाली है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। लेकिन वो क्योंकि बस धन, स्त्रियां, झूठी सभ्यता और ऐसी वस्तुएं की इच्छा करते हैं तो उस लोग की ये खबर ही नहीं होती है कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितना आनंद है। श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, विष्णु पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता रहता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति के फायदा बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों, सारे शास्त्रों का सार क्या है जानते हैं? सारे शास्त्रों का सार है कि ये जो जीवन है वो इतना क्षणिक है, इतना क्षणभंगुर है, बस एक निगम्य है, यानी कि इस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। फिर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति क्षणभंगुर जीवन से शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर लेता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी ये छोटे से जीवन से शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर ले। अब इस संसार में आपको थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ी सी शांति मिलती है या थोड़ी सी सुविधाएं मिलती है, वो शाश्वत तो नहीं है ना, ये तो अशाश्वत है। और दूसरा अभी श्री प्रभुपाद ने बताया वो कष्टों का कारण बनेंगी। तो इस क्षणभंगुर जीवन से जो शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर लेता है वही बुद्धिमान है। तो कैसे करते हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, वास्तव में अगर कोई सौदा करता है तो दुकानदार क्या करता है, साधारणतया क्या करते हैं, जितना पैसे हम देते हैं दुकानदार क्या करता है, उससे कम कीमत वाली वस्तु मुझे देने का प्रयास करता है ना, क्योंकि अपना भी तो लाभ रखेगा ना, तो कम कीमत वाली वस्तु देने का प्रयास करें। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम कम पैसे में दुकानदार से ज्यादा मूल्यवान वस्तु लेकर आते तो फिर हम क्या बोलते, हमने दुकानदार को ठगाया, जैसे ये कीमत, इस वस्तु है उसका मूल्य ज्यादा है पर मैंने कम कीमत में प्राप्त कर ली, तो वो बड़ी बुद्धिमानता का कार्य है ना। तो इसी तरह चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि भगवान के भक्त भगवान को बुद्धू बना लेते हैं। वैसे तो ये विनोद की बात है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जितने बुद्धिमान हैं उनको बुद्धि मैंने दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर विनोद के उसमें कह रहे हैं, जैसे अगर हम दुकानदार को 1 रुपया दें और 1 रुपये में से 1000 रुपये वाली चीज लेकर आएंगे तो हमने दुकानदार को मूर्ख बनाया ना। उसी तरह चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि जो भक्त हैं वो इतना क्षणभंगुर जीवन है, बिल्कुल थोड़ा सा जीवन है, इतना क्षणिक जीवन है, वो पूरा जीवन भगवान को अर्पित करता है, वो थोड़ा सा ही है लेकिन वो भगवान को अर्पित करता है और भगवान से शाश्वत जीवन ले लेता है, भगवान से शाश्वत आनंद प्राप्त कर देता है। तो क्या ये भगवान को ठगाना नहीं है? नहीं, वो कहते नहीं, ये भगवान को ठगाना नहीं है बल्कि वास्तव में भगवान की महा महा करुणा है। वास्तव में इस प्रकार का आदान प्रदान ये भक्त की बुद्धिमत्ता नहीं है, ये भगवान, ये भक्त की बुद्धि की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है, ये तो भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध की बात है, ये सौदे की बात नहीं है, ये तो भगवान की करुणा की बात है। भगवान कृपा करते हैं, करुणा से देते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ठग गए हैं। तो भगवान की भक्ति का इतना इतना लाभ होता है, लेकिन वो क्योंकि मूर्ख होते हैं, उनका ज्ञान हर लिया गया है काम वासनाओं के द्वारा, तो वो इस लाभ को नहीं जानते। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ मिलता है, मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को बोलकर अधिक धन, अधिक स्त्रियों तथा धन, अधिक संतान चाहने वाले लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पितृभूत प्रजेशादीन, वो क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, श्री ऐश्वर्य प्रजेप सवा, क्योंकि उनको स्त्री चाहिए, धन चाहिए, बच्चे चाहिए, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। जितना जितना आपके पास भौतिक सुविधाएं होंगी उतना उतना आपके कष्ट बढ़ेंगे। तो फिर थोड़ी सी सुविधा में भक्ति करके शाश्वत आनंद को प्राप्त करना बुद्धिमत्ता है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं सकते हैं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बताए कि अगर आप देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो क्या वरुण देवता आपको जल नहीं देगा, पवन देवता वायु देना बंद कर देगा, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा, इंद्र वर्षा करना बंद कर देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भगवान के दास मात्र हैं, भगवान के आदेश अनुसार वो कार्य करते हैं और वो ये सब सुविधाएं जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। जीने के लिए श्रम करे और श्रम क्यों करे, जिए क्यों, भगवान की भक्ति करने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि मैं भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, वो कौन है जिसने मुझे बनाया है, मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, कैसे उनके साथ अपने संबंध को निर्माण करूं, इसलिए ये जीवन मिला है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। वृत्तिपरक यानी जिस भी जन्म में आप, जिस भी वरुण में हो, जिस भी आश्रम में हो, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच जाएगा, इसी से उसको शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। जब भगवान श्री कृष्ण सशरीर राजधाम में थे, विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी और राज्यवासियों को सलाह दी थी कि वे अपनी व्यवसाय यानी कर्म द्वारा उनकी पूजा करें और ईश्वर में श्रद्धा रखें। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर देवताओं की पूजा अन्यथा ना होती, आवश्यक होती, तो भगवान ऐसा क्यों करते, सारे ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने से मना क्यों करते? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मनुष्य जीवन आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि भौतिक वस्तुओं की के लिए, भिखारियों की तरह देवताओं के पास जाकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मिला है। तो भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। बहुदेव पूजा यानी बहुत बहुत देवताओं की पूजा करना, शनिवार के दिन शनि की पूजा करना, सोमवार के दिन उसकी पूजा करना, मंगल के दिन दूसरे की पूजा करना, बुध के दिन दूसरे की पूजा करना, ये विकृति है। ये आपके ज्ञान के हार जाने की कारण है, क्योंकि आपके ऊपर रजोगुण ने इतना अधिक प्रभाव कर लिया है कि आप वास्तविक सत्वगुण में स्थित होकर विष्णु पूजा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप ऐसा करते हो। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा की गई है। प्रारंभ में कब किया था, जब हम लोगों ने सेकंड श्लोक पढ़ा था ना, धर्म धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। तो कैतव है यानी कि इस भागवतम में, क्योंकि केवल आपको भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम के आदान प्रदान के विषय में ही बताया जाएगा, तो इसमें केतव नहीं है, बाकी सब केतव है। केतव का क्या मतलब, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, द्विसंग कहिए केतव, आत्मबंधना कृष्ण 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 भक्ति बिना अन्य कामना, कि वो जो कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी कामना यदि आपके हृदय में आती है तो वो कैतव है। और वो क्या करेगा, आत्मबंधना, आपकी आत्मा को बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसाएगी। यदि आपके हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी कामना है तो वो सबसे बड़ा रोग है आपके हृदय का। तो जल्दी से उस रोग का हमें उपचार करना चाहिए भागवतम का पठन करके, क्योंकि भागवतम ऐसी औषधि है कि हमारी समस्त कामनाओं को नष्ट करके भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देता है और स्वतः सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैतव धर्म कहकर पहले ही इस सब बाकी सब चीजों की, जितने भी देवी देवताओं की पूजाएं हैं या जो भी अलग अलग पूजाएं हैं, वो सब धार्मिकता की निंदा की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वो है भागवत धर्म, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध को निर्माण करना, जो केवल भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। वास्तव में जीव का लक्ष्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, जीव का लक्ष्य प्रेम है। वास्तव भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके जीव कभी भी शांत होगा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। वास्तव में शांति प्रेम से प्राप्त होती है और प्रेम आप उसी से कर सकते हो जिससे आपका इटर्नल संबंध है। बाकी देखिए, देवताओं के जितने भी पुजारी हैं, अगर हम लोग देख भी लें, थोड़ा सा पीछे जाए, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की पूजा की 36,500 साल तक, लेकिन 36,500 साल कितना समय होता है, लेकिन उन हिरण्यकश्यपु और ब्रह्मा जी के दरमियान कोई भी प्रेम का स्वाद नहीं था, है ना, प्रेम का आदान प्रदान नहीं था। जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु को मार रहे थे, बल्कि फाड़ रहे थे, उसके अंदर से सारी चीजें निकाल कर अपने गले में डाल रहे थे, कितने खूंखार तरीके से नाखूनों से उसको चीर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा कि नरसिंहदेव भगवान ये मेरा भक्त है, इसने इतने हजारों साल तक मेरी तपस्या की है, आप इसके साथ ऐसा मत करो, ये मेरा भक्त है। मैंने कि अपने भक्त के लिए हृदय के अंदर जरा भी करुणा नहीं थी, प्रेम नहीं था, क्योंकि ये भक्ति नहीं थी, सौदा था। सिर्फ सौदा किया था, उनकी तपस्या की और बीच उसके बाद वरदान ले लिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी प्रेम होता तो आके कह सकते थे ना नरसिंह भगवान को कि आप मेरे भक्त को भले मार दीजिए, बट उसके साथ इतना ऐसे तो मत मारिए, इतना क्रूर व्यवहार तो ना कीजिए। लेकिन हृदय के अंदर कोई प्रेम नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण ने शिव जी की, वो देवताओं की पूजा करते ना कुछ प्राप्त करके, शिव जी की कितनी कठिन तपस्या की थी, इतनी बारी अपने गर्दन को काट काट कर शिव जी को होम किया था, इतनी सारे मंत्रा से शिव जी की पूजा करते थे, रावण कितना शुद्ध मंत्रास का उच्चारण करते थे, लेकिन जब राम श्री राम जी भगवान श्री राम जब रावण को मार रहे थे, तब शिव जी ने आकर श्री राम को रोका भी नहीं कि मेरे भक्त को इस प्रकार मत मारो, यानी कि सहायता करने के लिए नहीं आए कि मेरा भक्त है, इतना मेरी भक्ति की थी तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति 6 महीने तक की किसने, ध्रुव ने 6 महीने तक भगवान की भक्ति की और आज तक भगवान की सहायता करे। और उसको छोड़ो, महाराजा बलि ने 3 पग धरती दी भगवान को, 3 पग धरती देने के बाद भगवान को संतुष्ट किया और उसके बाद भगवान ने शाश्वत रूप से उसका पार्षद बनना शुरू कर स्वीकार कर लिया। वास्तव में जीव भक्ति करता है ताकि हम भगवान की पार्षद बन सके, लेकिन भगवान की इतनी करुणा है कि वो अपने भक्त के पार्षद बनने के लिए भी स्वीकार हो जाते। तो प्रेम केवल भगवान के साथ ही संभव है, बाकी जितने देवी देवता हैं उनके साथ आप सौदागिरी कर सकते हो, मैं आपको ये दूंगा आप मुझे ये दे देना, मैं आपको ये दूंगा उसके बदले में आप मुझे दे देना, इसी के लिए भक्ति, ये देवताओं की भक्ति केवल सत्वगुण में रहकर नहीं की जाती है, केवल रजोगुण और तमोगुण में रहकर की जाती है और सिर्फ सौदागिरी होती है। प्रेम अगर आपको करना है तो केवल और केवल भगवान के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिक लाभ प्राप्त होंगे ही नहीं। भगवान जैसे हमें पता है ध्रुव भगत ने भगवान की भक्ति की थी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि क्योंकि तुमने मेरी भक्ति की थी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए तुम्हें वो तुम्हें दूंगा। ध्रुव ने कहा नहीं, स्वामी कृतार्थ अहम वरम ना मानसे, अब तो मैं इतना संतुष्ट हो गया हूँ, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने यह दिखाने के लिए, कहीं बाद के लोग ये ना सोचें कि भगवान देते ही नहीं है भौतिक चीजें, तो ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया। इतना समय तक उसको राज्य प्रदान किया और उसके बाद एक लोक के जाओ, तुम कल्पों तक इसी लोक में राज करो, निष्कंटक राज करो। तो भगवान जो है अपने भक्तों को सब देते हैं। इवन भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये भौतिक लाभ तो मैं तुम्हें तब दे देता हूँ जब तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण नहीं होती है। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आपकी भक्ति करेंगे तो अगर कंप्लीट ना कर पाए तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं फिर भी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। 6.41 में भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। अगर भक्ति अधूरी रह जाएगी तो ये सारी चीजें जो आज हमें बताई जा रही हैं कि ये सब देवताओं की पूजा से मिलेंगी क्या? श्री ऐश्वर्य प्रदेव सवा, यानी कि श्री ऐश्वर्य और संतान। तो भगवान ने कहा ये सब चीजें तो तुम्हें तभी मिल जाएंगी, योगो भ्रष्टो भी जायते, जब अधूरा तुम्हारा योग रह जाएगा ना तभी शुचि नाम, आपको बहुत बहुत ना पवित्र आत्माओं की जहाँ पर बहुत अच्छा लोक होगा, अच्छा कुल होगा वहां पर। श्रीमताम, श्रीमताम का मतलब होता है संपन्न, धन दान शक्ति, ये सब तो तुम्हें योगो भ्रष्टो भी जायते, ये सब अगर तुम्हारी भक्ति कंप्लीट ना होगी तभी मिल जाएगा। और जब भक्ति कंप्लीट हो जाएगी फिर क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं 15.7 में न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमात्मनः। अगर भक्ति तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें मेरे धाम में जगह मिलेगी, और जहाँ पर आने के बाद तुम्हें वापस इस दुखों वाले संसार में जहाँ पर आवश्यकता होती है भौतिक चीजों की वहां पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और मेरे धाम में तुम परम शाश्वत आनंद को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर बताया कि जो रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं भौतिक भोगों ने जिनकी मति भ्रष्ट कर दी है कि वो किधर जाते हैं, वो ये जो देवता हैं उनके पास या फिर ना पितरों के पास, इनके पास जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय के अंदर कोई इच्छा होती ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करूंगी। सातवें सिकंद में प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान का वर्णन आएगा। नरसिंहदेव भगवान भगवान के इतने भयंकर अवतार थे, इतने भयंकर अवतार हैं कि उनको देखकर हिरण्यकश्यप ही नहीं सारे देवी देवता भी भयभीत हो जाते हैं। परंतु उनका जो प्रेम का आदान प्रदान है प्रहलाद के साथ वो इतना मनोहर है। नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद से कहते हैं हे प्रिय प्रहलाद कोई वर मांगो मुझसे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु वर? ऐसे सुन के प्रहलाद की आंखों में से इतनी वर्षा होने लगती है आंसुओं की, और कहते हैं प्रभु मैंने वार मांगने के लिए तो आपकी भक्ति नहीं की थी, मैंने प्रेम की आपसे कोई सौदा तो नहीं किया। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत प्रार्थना की भगवान से, और बहुत बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद साधारणतया लोग भगवान के पास जाते हैं तो यही सोचकर कुछ न कुछ इच्छा रख के जाते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरी ये कमी है, ये कमी है। लेकिन प्रहलाद महाराज इनकी उत्तम भक्ति का भाव कितना विपरीत है, भौतिक स्तर से कितना ऊंचा है। आज हम पढ़ रहे हैं कि ये श्री ऐश्वर्य और ये सब प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्त का भाव इतना ऊंचा है। जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद ने कहा मामा प्रलोभयत्पत्या सत्वं कामेषु देवरा तत्संग भीतो निर्विघ्ने मुमुक्षुत्वा उपाशित मामा, यानी मत नहीं नहीं प्रलोभयत्पत्या मेरे हृदय में प्रलोभन क्यों उत्पन्न कर रहे हो? सत्वं कामेषु देवरे ये काम वरों की कामना उत्पन्न करके वर की कामना बता के मेरे हृदय के अंदर आप क्यों और भी प्रलोभन दे रहे हो? मैं पहले से बहुत ज्यादा कामी हूँ, मैं बहुत आसक्त हूँ और ये भौतिक आसक्ति और भौतिक काम से जो मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ, इससे मैं बहुत भयभीत होता हो गया हूँ। तत्संग भीतो निर्विघ्ने, तो इस भौतिक संघ की आसक्ति से के बंधन से बचने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुमुक्षुत्वामुपाशिता, इसी भौतिक कामनाओं की आसक्ति से बचने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो। मामा प्रलोभयोत्पत्त्या सत्वम कामेषु देवरे, और आप भी अगर मुझे प्रलोभन दोगे, आप मुझे प्रलोभित करोगे, तो मैं किसके पास जाऊंगा शरण लेने के लिए? मैं किधर जाऊंगा? मैं इन कामनाओं से, भौतिक आसक्ति से बचने के लिए तो तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान वर देना चाहते हैं और भक्त बोलते हैं कि मुझे वर नहीं चाहिए। जैसे वर के प्रलोभन से भयभीत होकर बचने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, फिर भी भगवान बोलते नहीं, मैं आपको प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूँ, तुम कुछ मांगो मुझसे। जब बहुत ज्यादा ऐसे अनुरोध करते, फिर पता है प्रहलाद क्या कहते हैं? प्रहलाद कहते हैं, यदि दास्यते मे कामात् वरांस्त्वां वरद वरदर्शधा कामान् वृद्धि असंगलोभम भवतस् गुणे वरम। हे प्रभु, यदि आप वाकई में मेरी कोई कामना पूरी करना चाहते हो, तो मेरी ये कामना है कि मेरे हृदय में आज के बाद कोई कामना उत्पन्न न हो। ये भक्त की स्थिति है। ये जो भौतिक, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, भौतिक लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जा रहे हैं और भक्त क्या कहता है? मेरी ये कामना है कि मेरे हृदय में कोई कामना उत्पन्न ही ना हो। तो नरसिंहदेव भगवान ये सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त को कि वो स्वयं को दे देते हैं और भगवान शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद, शाश्वत काल तक अपना प्रेम भक्त को दे देते हैं। तो लेकिन ये मूर्ख होते हैं, उनको खबर नहीं होती है भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति के साथ हमें क्या प्राप्त होगा। इसलिए मूर्खता के कारण, रजोगुण और तमोगुण के असर के नीचे आने के कारण वो भगवान की भक्ति छोड़कर देवताओं के पास जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।